एहेस्केल अध्याय 24। अध्याय 24 में फिर से एहेस्केल अध्याय 24 पद 1। नवे वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को ध्यान रखिए कि वो बाबुल में है और नवे वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन। एहेस्केल अध्याय 24 पद 1 और 2। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, ये समय लिख कर रख ले, नवा वर्ष, दसवां महीना और दसवां दिन। एहेस्केल अध्याय 24 पद 2 में आगे लिखा है, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। ये वो दिन है जब बाबुल के राजा ने यरूशलेम को घेरा था। वो बाबुल में है, उसने सबके सामने ये तारीख लिख ली। दूसरा राजा अध्याय 25 पद 1 में लिखा है, सिदकिया ने बाबिल के राजा से बलवा किया, उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबिल के राजा नबुकदनेज़र ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके पास छावनी करके उसे चारों ओर कोट बनाए। यहां नबुकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के घेरे जाने और उसके चारों ओर किला बंदी करने तथा तारीख का विवरण है। उस समय ना तो डाक व्यवस्था थी ना ही टेलीफोन थे। वो सुबह उठा, तारीख लिखी और लोगों में घोषणा कर दी। कैसे? परमेश्वर ने उससे कहा, अन्यथा इतनी दूर रहकर उसके लिए ये जान लेना असंभव था। उस युग में तेज से तेज संदेश वाहक भी बाबुल और इसराइल के बीच आने जाने में 2 हफ्ते लगाते थे। ये और एक प्रमाण है कि परमेश्वर ही इस पुस्तक का लेखक है। एहेस्केल अध्याय 24 पद 3 से लेकर 9 तक। और इस बलवाई घराने से ये दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हांडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंदा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हांडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर ही हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हांडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी ना डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूली से नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वो ढप ना सके और कि बदला लेने को जल जलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर, मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा। वो एक और प्रतीकात्मक काम करता है। वो एक हांडे में पानी और मांस तथा हड्डियों से भर देता है और उसके नीचे हड्डियां जलाता है। लोग आकर उसे पूछते हैं, तू कर क्या रहा है? हड्डियां जलाकर मांस उबाल रहा है? तब वो कहता है, यरूशलेम के निवासियों के साथ यही हो रहा है, वे भस्म होने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि अध्याय 16 में वे कह रहे थे, हम तो हांडे में हैं, आग हमें भस्म नहीं कर पाएगी। वो तब आग जलाता रहता है जब तक कि मांस पक नहीं जाता। वो इस प्रकार उन्हें परमेश्वर के दंड का प्रदर्शन करके दिखाता है। एहेस्केल अध्याय 24 पद 14। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और वो हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुझ पर तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। मुझ यहोवा ही ने कहा है और वो हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, ना छोड़ूंगा, ना पछताऊंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर जब इतना अधिक बल देकर कहे तो उसे रोकने वाला फिर कोई नहीं, शायद मध्यस्थता की प्रार्थना भी नहीं, उसका कहा शत प्रतिशत होगा ही। एहेस्केल अध्याय 24 पद 15 और 16। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं। मैं आज तेरी पत्नी को उठा लूंगा, अर्थात वो मर जाएगी। एहेस्केल अध्याय 24 पद 16 और 17। परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना, लंबी सांसें ले तो ले परंतु वे सुनाई ना पड़े, मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना। जब कोई मर जाता है तब वे अपनी पगड़ी और जूते उतार कर रख देते थे और नंगे सिर और नंगे पांव चलते थे। एहेस्केल अध्याय 24 पद 17 में आगे लिखा है, सिर पर अपनी पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना और ना अपने होंठ को ढपना, अर्थात अपनी दाढ़ी बढ़ने न देना। किसी सगे संबंध की मृत्यु पर शोक प्रकट करने का चिन्ह है। वे 30 दिन तक दाढ़ी बढ़ाते हैं और 30 दिन के बाद उन बालों को ही बलि चढ़ाते हैं। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि अपनी दाढ़ी को बढ़ने न दे और अपने होंठ को ना ढापना। एहेस्केल अध्याय 24 पद 17 के अंत में लिखा है, ना शोक के योग्य रोटी खाना, उनकी दुख की रोटी अलग होती थी। उस रोटी को कोई खाता था तो उसका अर्थ था कि वो शोक कर रहा है, उसे शोक का कोई रीति पूरी नहीं करनी थी। एहेस्केल अध्याय 24 पद 18 से लेकर 21 तक, तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को स्त्री मर गई, और भोर को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें ना बताएगा कि ये जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तू इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो, मंदिर तो ध्वस्त होने को है। पद 21 में आगे लिखा है, जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है। प्रत्येक यहूदी के लिए मंदिर सुंदरता का स्थान था। सुलेमान ने इसे बनाया था जो सुंदरता से भरपूर था, आंखों के लिए लुभाने वाली बात थी। परंतु परमेश्वर ने कहा यह मंदिर भी नाश हो जाएगा। एहेस्केल अध्याय 24 पद 21 और 22, उसे मैं अपवित्र करने पर हूं और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ ना ढापोगे, ना शोक के योग्य रोटी खाओगे। दूसरे शब्दों में शीघ्र ही समाचार आएगा कि यरूशलेम गिर गया और तुम्हारे रिश्तेदार मारे गए, परंतु तुम शोक की प्रथा पूरी नहीं करना। एहेस्केल अध्याय 24 पद 23, तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे, ना तुम रोगे ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराते रहोगे। मृतकों का शोक मनाने के स्थान पर अपने लिए और अपने पापों के लिए शोक मनाना। एहेस्केल अध्याय 24 पद 24 से लेकर 27 तक। इस रीति एहेस्केल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, और जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, क्या ये सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण, और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा, उसी दिन जो भागकर बचेगा वो तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा, उसी दिन मुंह खोलेगा और तू फिर चुप ना रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब उसे तब तक चुप रहना था जब तक कि उसके कहे अनुसार समाचार ना पहुंचे, उसके बाद वो फिर बोलेगा।